नितय गौरपिमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज महादेव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, निथाई गौर प्रेमानंदे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सब लोग बोलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के 29 दिसंबर के त्रिभुवनेश्वर के मंदिर में आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कृपा से जगह जगह पर हमको छत्र छाया उपलब्ध है। वेर एवर वी गो, परदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शुद्ध प्रसाद, भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का संग सब जगह प्राप्त है। विदेश जैसे कठिन देशों में भी भक्ति करना प्रभुपाद जी ने आसान कर दिया है। सडनली आपको बीच भौतिक जंगल में एक सुंदर स्थान जो जग के परे हैं, त्रिगुण से परे हैं, भगवान की भक्ति यहाँ पर हो रही है, भोग लग रहा है, सेवा हो रही है, बहुत एक मन में आसरा हो जाता है, आश्रय शांति का अनुभव होता है। श्री वृंदावन धाम में, मायापुर में, जगह जगह पर और भी सैकड़ों मंदिर बन रहे हैं विश्व भर में, भारत भर में मंदिर बन रहे हैं, नए नए मंदिर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वरदान है वो सत्य होते हुए नजर आ रहा है। पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ बवरो नाम। पृथ्वी में सब जगह, हर जगह, हर ग्राम, हर गांव में, हर शहर में मेरा नाम लिया जाएगा। 10,000 साल तक ये चलेगा, 10,000 ईयर्स। अभी उसमें से 530 साल गुजर चुके हैं। 1486 से 10,000 साल गिनना है आपको, 1486 से आगे 10,000 साल आपको गिनना है। तो वो सब उस समय तक कलयुग का स्वर्ण युग रहेगा, द गोल्डन एज ऑफ कलयुग का। इस समय के बीच में जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेगा, अपने जीवन को भगवान के नाम के जप करने के, कीर्तन करने के विधि में समर्पित करेगा, वो इसी जन्म के उसी मतलब उसके उस जन्म के अंत में भगवत धाम चला जाएगा। ऐसा भगवान का वरदान है, लोगों को पता नहीं है, लोग जानते नहीं इसके बारे में, इसलिए भक्त लोग प्रचार करते हैं। भक्तों को बाहर जाकर प्रचार करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद का उद्धार तो कर चुके हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं भी एक दिन अनजान था, मुझे किसी ने बताया, इसलिए मैं आया, मैंने कुछ करना शुरू किया, तब मुझे दिव्य लक्ष्य नज़र आया कि मेरे जीवन का दिव्य लक्ष्य ये है, तब से मेरा जीवन का क्वालिटी सुधर गया, दर्जा सुधर गया, शुद्धि आ गई, पवित्रता आ गई, मन में शांति आ गई, आनंद का अनुभव होने लगा, हर प्रकार के आनंद का, विविध प्रकार का आनंद मैं लेने लगा, तो क्यों मैं ये सब केवल अपने लिए रखूं, क्यों ना दूसरों को भी बोल दूं, मेरे दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को, बंधुजनों को क्यों नहीं बताऊं उसको। इस भावना से भक्त लोग प्रचार करते हैं, ये समझकर प्रचार नहीं करते कि मैं तुमसे कुछ बड़ा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, आप लोग बहुत तुच्छ हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हो और मैं कैसा हूँ। ये भाव नहीं इसके अंदर, ये गर्व की भावना नहीं है, करुणा की भावना है। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं कि अहम बीज प्रदपिता, तो गर्व से नहीं बोल रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बड़े घमंडी है, बार बार मैं मत्ता सर्व प्रवर्तते, हाँ सर्वधर्मम परित्याजम माम एकम, मुझे शरण में आ जाओ, मैं ही वो परब्रह्म हूँ, मैं ही वो मालिक हूँ, नियंत्रण हूँ, मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कितने बार बोल रहे हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन वो कोई गर्व नहीं कर रहे हैं, वो केवल सत्य बता रहे हैं, सत्य से आपको अवगत करा रहे हैं, इसमें करुणा ज़्यादा है और सत्य सम्मिलित है उसके अंदर। तो जो व्यक्ति द्वेषी होता है वो हर वस्तु को अपने द्वेष के दृष्टि से देखता है, तो उसको लगता है कि ये घमंडी है, ये चालू है, ये कामी है, ये पैसे वाला है, ये गर्विष्ठ है, ऐसा उसको दिखता है। लेकिन भक्त लोग उनको लोग पूछते हैं कि दिसंबर में आप लोग रोड पे जा जाके गीता क्यों बेचते हो, क्योंकि लोग मंदिर में नहीं आते खरीदने के लिए, इसके दरवाजे तक पहुँचते हैं, रोड तक पहुँचते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं, मतलब शॉपिंग में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, इधर कहीं घूमने जाते हैं समुद्र किनारे भेलपूरी खाने के लिए, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आप जा रहे हो आम तौर पर, वहाँ पर वो पहुँच के आपका कष्ट दूर कर रहे हैं कि चलो भाई आपको वहाँ आने को तकलीफ हो रही है तो ये लो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ये लो इसको पढ़ो, जो अर्जुन को सुनाया था वो आपको भी उपलब्ध है। तो इस तरह से, और जब ये भक्त जो है वो अपना प्रचार का कार्य करते रहता है, तो भगवान ने कहा है भगवद गीता में 18वें अध्याय में 68वां श्लोक है, ये आप जाके पढ़ सकते हो, 18 अध्याय 68वां श्लोक है। तो उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि मेरे विषय में जो भी ज्ञान है वो जो भी व्यक्ति दूसरों को बताएगा उससे अधिक प्रिय मेरा और कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भगवान ने गीता में समझाया ज्ञान, उसको जो दोहराएगा किसी और के लिए वो भगवान क्या ही काम कर रहा है ना, वो भगवान का ही मैसेज पहुंचा रहा है। तो कहते वो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। तो जब भक्त लोग प्रचार करते हैं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी दया उस पर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के बहाने पूरे विश्व के लिए ये गीता बताई थी और भक्त लोग वो संदेश को लेकर दर दर पहुँच रहे हैं, हर लोगों के पास पहुँच रहे हैं, उनको ये मौका दे रहे हैं ले लो कम। फिर भी कितने लोग बाकी है अभी जिनको मिलना है और जिनको देना है ज्ञान, सब लोग ले नहीं पाते उसको, कोई लोग ईर्ष्या करते हैं, गर्व करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उनको प्रसाद देते हैं हम लोग, भाई कोई बात नहीं लड्डू तो खा लो, लड्डू सब लोग खाते हैं, आप भी खा लो, भगवान को भूख लगा के देते हैं। ये न के न प्रकार वो प्रयास करते हैं कि भगवान की कृपा जीव तक पहुँच जाए किसी न किसी प्रकार से, समझे ना समझे। जैसे भक्तिविदान्त अस्पताल में कई प्रकार के मरीज भर्ती होते हैं, मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, तो जो भी डाइट खाते हैं हॉस्पिटल में वो सब भगवान को भोग लग के प्रसाद के रूप में खाते हैं। उनको पता नहीं है, वो तो एडमिट है, वो तो उनका बीमारी के हिसाब से डॉक्टर ने लिख के दिया है, वो डाइट किचन से आ रहा है और वो खा रहे हैं उसको, लेकिन वो जानते नहीं कि ये प्रसाद खा रहे हैं भगवान का, चाहे लिक्विड डाइट खाते होंगे, सूप पीते होंगे शायद, केवल सूप ही दिया उनको और कुछ दिया नहीं है, ये वो भगवान को भोग लग के चढ़ के आता है, वो कितनी भाग्य की बात है। तो ये न के न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से युक्ति निकाल के, युक्ति 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 निकाल के लोगों को भगवान से परिचय कराना चाहिए। जैसे हमने कैसे एक आइडिया निकाला कि लोग शादियां तो करते ही रहते ना, लड़कों की लड़कियों की शादियाँ होती रहती हैं, लाखों रुपए खर्च तो करते रहते हैं, और वो समधियों को इनको बारातियों को गिफ्ट देना पड़ता है उनको। तो हमने बोला कि आप उनको भगवद गीता दीजिए, कृष्ण की किताब दीजिए, वो तुम पर्स दोगे उनको या कुछ बेल्ट दोगे या कुछ और कुछ किताब कुछ और कुछ देंगे उनको, हाँ कुछ बैग देंगे, साड़ी देंगे, शर्ट पीस देंगे, कुछ देंगे, क्या देना है ये भी एक बहुत चर्चा होती है, क्या देना है, क्या दे सकते हैं। ऐसा दो चीज़ जो जन्मांतर जन्मांतर तक उनके साथ में रहेगा। तो ये बात बहुत चली, लोगों ने बहुत उसको एक्सेप्ट किया। किसी का सीमांतरनयन उत्सव हो रहा है, किसी का गर्भाधान संस्कार हो रहा है, किसी का नामकरण हो रहा है, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, किसी का वास्तु पूजा हो रही है, किसी का उद्घाटन हो रहा है, कुछ किसी का सत्कार हो रहा है, सब जगह हम लोग बोलते हैं ये इसको दे दो। तो बोलते हमारे पास गीता है, बोले कोई बात नहीं आपके पास रखो और ले लो और दूसरों को दे दो गिफ्ट के रूप में। ऐसा है। फिर हमने और एक आइडिया लड़ाया, बहुत लोगों को दुकान होते हैं बहुत सारी, हजारों लाखों का दिन में व्यवहार करते वो। तो हमने कहा एक महीने में काम करो, मार्गशीर्ष महीना कृष्ण भगवान का महीना है, वो मार्गशीर्ष महीने में जो भी धंधा करते हो आप, 2000 के ऊपर कोई खरीदी कर उसको एक गीता गिफ्ट में दे दो, फ्री में दे दो। आपने 2000 का माल लिया हमसे, ये लो आप हमारी तरफ से एक भगवद गीता प्रेजेंट। तो वही बात चली। और फिर वो बहुत लोगों ने अपने अपने दोस्तों को जाकर बताया कि तुम्हारा दुकान है, कपड़े का है, किसी का बैग का है, किसी का फलाना है, किसी का कुछ है, तुमने लिया। और जो कस्टमर भी वो खुश होने लगा, अरे आपने गिफ्ट दिया हमको, और बताना उनको क्या दे रहे हैं आपको, ये अमूल्य भेंट है आपके जीवन में, कृष्ण भगवान आपके घर पर उपदेश के रूप में आ रहे हैं, कभी ना कभी पढ़ेंगे, कभी ना कभी उनका उद्धार होगा। एक कहानी बताऊं क्या, कैसे कैसे लोगों का उद्धार होता है, हाँ, और कैसे कैसे लोग भगवान के भक्त जो है वो कैसे कैसे रिस्क लेकर लोगों को भगवान का परिचय कराते हैं, जीवन का रिस्क लेकर। कोई नहीं करेगा अपना आजकल, कौन कौन करेगा, लेकिन हमने विदेशी लोगों को करते हुए देखा है। तो हम लोग तो भारतीय लोग हैं, हमारा तो वंश है, हमारा धर्म है, ये सब हमारी गीता है, हमारा देश है, हमारी भूमि है, सब ये सब ज्ञान हमारा ही है, तो हम लोग करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। विदेशी लोग जो म्लेच्छ लोग यवन के वर्ग में आते हैं, वो मांसाहार करने वाले, व्यभिचार करने वाले, वो लोग जब भक्त बने और उनको जब मालूम पड़ा कि हम लोग क्या थे और क्या बन गए, तो क्यों हम लोग शांत बैठे, उस लोग को बताना चाहिए जो लोग इतना पाप कर रहे हैं। तो एक लड़की, जवान लड़की जो इस्कॉन की भक्त बनी, अमेरिकन, अभी आपको पता नहीं अमेरिका की लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, नोबडी नोज, जाते हैं पता चलता है, इतना भयंकर पाप करते हो लोग। और उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको पता भी नहीं है कि पाप है, जब हर वीकेंड को नई औरत के साथ घूमने जाते हैं और सेक्स करते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है, उनको बोलते क्या है इसमें, व्हाट इज देयर, पानी के बदले में बियर पीते हैं खाना खाते वक्त, क्या मालूम, उनको पता ही नहीं है। यहाँ पर कम से कम पता है कि पाप हो रहा है, वहाँ तो पता भी नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको इतना समझता है इंद्रियों ने मांगा तो देना चाहिए, दैट्स ओनली देनो, कौन से इंद्रिय ने क्या मांगा दे दो, जीवन किसके लिए है, इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, तृप्त तो होते नहीं है लेकिन जो मांगे हैं वो पूरी करो। तो ये ऐसी घर से पैदा हुई, क्या क्या पता नहीं पाप किए होंगे, वो बाद में भक्त बनी, उसको पता चला कि इतना अमूल्य ज्ञान मिला है मुझे, और वो दिसंबर में इस्कॉन में सब लोग जाके लोगों को बांटते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन उसको अच्छा लगा क्योंकि वो किताब पढ़ के भक्त बनी थी। तो भगवद गीता लेकर ट्रेन में बांटती थी वो, अचानक ट्रेन में आएगी बैग लेकर, अटेंशन प्लीज प्लीज लिसन टू मी 2 मिनट्स, ऐसा बोल के चालू करेगी अपना 5 मिनट का प्रवचन, और सबके हाथ में गीता है पकड़ाएगी ट्रेन के पैसेंजर के अंदर, बोले ये अच्छा लगा तो ले लो तो वापस करो, 2 मिनट रखो, उसका चार्ज नहीं है। रेल में कैसे करते ट्रेन में, ये माचिस ले लो, ये बहुत सस्ते मिल रही है आपके पास रखो, देखने का चार्ज नहीं, ले लो, ऐसे गीता रखती थी, फिर वापस राउंड मारती थी, कुछ लोग लेते थे कुछ लोग वापस करते थे, फिर अगली बोगी में, फिर अगली बोगी में ऐसे करती थी ठंड के मौसम में, दिसंबर में क्या गर्मी होती है अमेरिका में, इतना ठंड होती है उसमें, उतरना चढ़ना बोगी में। तो एक बोगी में ऐसे रोज करती थी वो दिसंबर के महीने में, एक दिन में, बहुत दिन के बाद में एक बोगी में चढ़ी वो। तो वहाँ पर बोले लगे अपना दिखा के गीता वगैरह। तो एक आदमी ना ऐसा डकैत जैसा था, वो माफिया था, बहुत गुंडा था, शराब पी के तर था जो मैसा, पूरा नशे में था। तो उसको बिल्कुल अच्छा लगा नहीं कि लड़की भगवत गीता के बारे में बता रही है। बोलते शट अप, बंद करो ये नाटक तुम्हारा, बिल्कुल आवाज़ बंद करो। तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, बोलते रहते कोई लोग। तो उसने दुर्लक्ष किया और अपना चारू रखा उसने, बंद करती हो कि नहीं, फिर भी उसने दुर्लक्ष किया। क्योंकि दे आर ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग होती है पूरी कि लोग ऐसे मिलेंगे आपको, चिल्लाने वाले, गाली वाले, ज़्यादा बुरा मत मानना। जैसे हमने कैसे बताया आपको, साक्षी गोपाल मंदिर में गंगा और भैरा बन के जाना, तो मुझे बोला उसने त्रिभुवन भुवनेश्वर मंदिर में कल, इनका मौन व्रत लगता है। तो मैंने कहा कल की बात है भुवनेश्वर मंदिर की, बहुत गुस्सा आया उसको क्योंकि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बोले हरे कृष्ण लोगों को आज मौन व्रत है। बोले ठीक है। तो वैसे वो ट्रेन थी बिल्कुल, उसने कुछ रिस्पॉन्स दे दिया, लेकिन वो आदमी को रहा नहीं गया। व्हाट डू यू मीन, मैं बोल रहा हूँ तुम चुपचाप नहीं रहते हो, बोलते जा रही हो। तो वो उठा, वो बोला देखो अब बंद नहीं करोगी तुमको मैं ट्रेन से फेंक दूंगा। फिर भी उसने दुर्लक्ष किया, बोलती रही, दूसरों को बोल रही है वो। तो उसको बहुत ज़्यादा नशे में था ना वो, बहुत गुस्सा आया उसको, उसने उसका हाथ का किताब लिया, ऐसा कुचल के उसको नीचे फेंका, उसको पैर से कुचल दिया और उसको धक्का मार के ट्रेन से फ्यार फेंक दिया। आप सोचो उसने जो बोला वो किया, ऐसा धमकी नहीं रहता। उसने किताब को कुचल कर उसको धक्का मारकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया और बड़े ऐसा विजयी भाव में आया सर, कोई बड़ा काम किया उसने। फिर को मन में आया कि मेरे पत्नी को भी मेरा ये आज का पराक्रम बताना चाहिए, इसलिए वो कुचली हुई गीता को उसने उठाया, हाँ उसके पैर से वगैरह कुचला हुआ एकत्र किया और बैग में रखा। बड़े ऐसे गर्व से बैठ गया, फिर उतर गया और घर पे आया। घर पे आया तो उसको बहुत उत्सुकता थी पत्नी को बताऊँ मैं अभी। तो एक पत्नी घर पे नहीं थी, बाहर गई थी, नशा में था। तो ऐसा किताब टेबल पर पटक दिया ऐसे और नशे में जाके सो गया ऐसे जूता वूता पहन के। उधर वो लड़की गिरी बहुत देर, फिर वो लोगों पुलिस आए उसको उठाया, बहुत फ्रैक्चर वगैरह हो गया था उसको, बेहोश हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में रखा, उसको फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया, बहुत दिन हॉस्पिटल में रही, कई दिन क्रच पे रही वो, बाद में फिजियोथेरेपी हुआ, बहुत महीने गए उसके अंदर को ठीक होने के लिए। एक जगह पे नहीं, कई जगह फ्रैक्चर हुए उसको। अगर आप उस लड़के के जगह होते तो क्या करते, सोचिए आप, इसमें से बहुत जवान लड़की बैठी हुई है, क्या करते आप लोग? हाँ हाँ, बोला बस हो गया अभी हरे कृष्णा, कौन करेगा ये सब, हाँ मार खा के हाथ पाँव तोड़ के किसको बुक भेजना है, ये हरे कृष्ण में आए सब गड़बड़ हो गया, अभी हरे कृष्ण में छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे ना, अभी इतना बुरा अनुभव आने के बाद में कौन चले करेगा अंडर हरे कृष्ण कंटिन्यू। कम से कम बुक तो बेचना बंद कर देंगे, अपना भजन करेंगे बस हो गया, अभी पब्लिक का सेवा बहुत हो गया, अभी करोना वरना छोड़ो, अभी अपना कल्याण देखो पहला। ऐसा हम लोग विचार करेंगे। जैसे ही अच्छी हो गई वापस किताब वितरण चालू। कितनी श्रद्धा थी उसको इस बात पर, कितनी श्रद्धा थी कि चाहे मुझे कष्ट हो गया होगा, मेरे पुराने कर्मों का हिसाब किताब निकला होगा, लेकिन कितने जीव अभी अज्ञान में पड़े हुए हैं। जैसे वो था एक मूर्ख व्यक्ति, वो भी अज्ञान में ही तो पाप कर रहा था। ऐसे कितने लोग हैं, लेकिन सब पापी लोग ऐसे आतंकवादी नहीं होते, सब कुछ पापी लोग सुनते भी है और सुधर जाते हैं, तो उनको भूल जाओ, बाकी लोग अच्छे हैं उनको बोलो सुधर जाएंगे। ये भावना से चालू रखा उसने अपना काम, और उसके आगे भी वो थोड़ा सा उसको शरीर में थोड़ा व्यंग्य आ गया था उसकी वजह से, फ्रैक्चर के चलना मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन चल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण चालू है। जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इतना त्याग कर रहे लोग, देखो उसके बाद क्या हुआ, ये एक अंक हो गया। दूसरा अंक क्या हुआ, वो आदमी उसके कुछ दिन बाद में उसकी पत्नी ने उसको डिवोर्स दे दिया। वो तो आम घटना है अमेरिका में, क्या है आज एक कल दूसरी फिर तीसरी, वो साल में बजट करते हैं वो लोग डिवोर्स के लिए भी बजट बना देते हैं कि हो गया डिसाइड तो बने बजट होना चाहिए उसके लिए। ऐसा लाइफ है उनका, बेकार लाइफ। तो वाइफ ने डिसाइड उसको कर दिया डिवोर्स, फिर उसकी नौकरी भी चली गई, एकदम घर भी गिरवी लग गया उसने, वो भी वैसा खत्म हो गया उसका नशा के वजह से, एकदम खराब कंडीशन आया उसका एकदम, मतलब घर पता नहीं रखा कि नहीं, लेकिन घर के आगे की कथा है उसकी। इन शॉर्ट उसका दिवाला निकल गया, पूरा दिवाड़खोर हो गया वो। तो एक दिन सा उदास होकर, परेशान होकर, दुखी होकर, फ्रस्ट्रेट होकर घर पे आया और कुर्सी में ऐसा बैठा था वो, चिंता में किताबों की ओर देख रहा था, लाइब्रेरी की ओर। तो मैं एक बात बताना भूल गया आपको, जब वो दारू पी के घर पे आके सो गया तो उसकी सर्वेंट आई और उसने देखा कि घर साफ करना है, इधर उधर देखा तो ये किताब ऐसी बिखरी हुई है, लगता है नई नई किताब है लेकिन वो कैसे पता नहीं कहाँ गिर गई होगी। तो उसने बड़े प्रेम से उसको इकट्ठा किया, पेपर सबको अच्छी तरह बाइंडिंग किया, चिपकाया उसको ठीक से, वापस जितना हो सके उतना नए किताब का रूप दिया उसको एकत्र करके, और वो बुक सेल पर रख दिया उसको, उसने अपना सेवा करके रख दिया उसको। तो ऐसा झांक रहा था उस समय, तो उसको एक किताब देखी जो मैंने खरीदी नहीं थी, वो कौन सी किताब है, बाकी तो मैंने खरीदी हुई जानता हूँ मैं, लेकिन ये तो पता नहीं कौन सी है। उसको निकालता है वो उस अवस्था में जब पत्नी छोड़ चुकी है, बच्चे छोड़ गए हैं, नौकरी चली गई है, दुखी है बहुत, और वो खोल के पढ़ने लगता है और उसको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो पूरी किताब वो रात भर पढ़ लेता है, सुबह 5 बजे तक पूरी भगवद गीता पढ़ लेता है। वो इतना मन में उसकी अनुभूति होती है, भाव प्रेम मैं क्या था, क्या हूँ और क्या क्या बताया गया इसके अंदर। उसको याद भी आता है कि ये किताब थी जो मैंने कुचली थी, उसको बाहर फेंक दिया था, वो कितना अच्छा कार्य कर रही थी, मैंने उसको जान से मारने के लिए गाड़ी से फेंक दिया, कैसा पापी हूँ मैं। बीच में एक बात और हो गई थी, मैं भूल गया बताने को, कि उसका एक्सीडेंट भी होता है बीच में, उसके पैर हाथ टूट जाते हैं और वो व्हीलचेयर में होता है, तो व्हीलचेयर में ही किताब पढ़ रहा है वो घर में बैठ के। और अमेरिका में कैसे होता है, व्हीलचेयर ऑटोमेटिक होती है, वो खुद चला सकते हैं आप, धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधा उसने पूरा किताब पढ़ा तो उसको इतना पश्चाताप हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं मुझे तो भक्त बनना चाहिए। तो वो आगे पीछे छान मारा किताब के, एड्रेस कुछ होगा क्या उस किताब का, तो उस किताब में अमेरिका के एक जगह का मंदिर का एड्रेस था। तो सीधा उसने वो मैप निकाल के देखा किधर है और सीधा निकल गया घर से, बोला आज के आज मुझे मंदिर में ज्वाइन करना है। तो मंदिर पहुंचा वो एड्रेस ढूंढ ढूंढ के, तो मंदिर पहुंचने के बाद में जब बेल बजाया उसने, वहाँ पर तो ठंड होते हैं ना, तो दरवाजे बंद होते हैं, ऐसे खुला नहीं होता है वहाँ पर, ऐसे देखेगा तो अमेरिका में पागल हो जाएंगे लोग, इतनी ठंड बर्फ में ऐसे कैसे प्रवचन कर सकते हैं। सब हीटिंग होता है, पूरा मंदिर बंद होता है, पूरा कांच होता है, अंदर जाके फिर प्रवचन होता है, हीटर होता है अंदर। तो जब दरवाजे का बेल बजाया मंदिर का, तो उसी ने दरवाजा खोला जो लड़की को उसने धक्का मार के गिराया था, उसी लड़की ने उसको दरवाजा खोल के अंदर बुलाया। वो लड़की को पहचान नहीं पाई उसको, क्योंकि वो दाढ़ी बड़ा हुआ था, वो कुछ हुलिया बदल गया था, बहुत बीमार था, व्हील चेयर में हो गया, तो उसको इतना याद नहीं आया। लेकिन ये व्यक्ति ने उसको पहचान लिया कि ये तो लड़की है वो जिसको मैंने धक्का मारा था। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, केवल आंसू आने लगे उसके आंखों से, वो कुछ बोल नहीं पाया, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने के लिए कि मैं ही हूँ वो। और वो लड़की उसको सत्कार कर रही है, उसको बुला रही है, उसको याद दिखा रही है, दर्शन का परिचय कर रही है, प्रभुपाद जी का परिचय करा दिया, मंदिर का परिचय करा दिया, फिर नीचे लेके गई प्रसादम हॉल में, उसको प्रसादम खिलाया उसने, बहुत पिल्लास में बताया, वो शांति से सुन रहा है, उसके आंखों से आंसू आ रहे। तो लड़के को आश्चर्य हो कि एंड में यस यस सर, आप वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि अभी ऐसा तो हमको अनुभव आता है ना, हम किसको प्रवचन दे रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, ऐसा तो मुश्किल है बहुत। इतनी कथा तो मेरी अच्छी नहीं हो सकती क्या, सब रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी से बात कर रहे हैं, वो आदमी रो रहा है, ऐसे पूरा बहुत आश्चर्य की बात। तो वो और रोने लगा जब उसने पूछा, बहुत फूट फूट के रोया, बाद में बोला कि आई एम द पर्सन हु थ्रो यू आउट ऑफ द ट्रेन, कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपको ट्रेन में बाहर फेंक दिया। तो आप क्या करेंगे, अरे यू आर द वन, अब भी तुम्हें दिखाती हूँ, हाँ इसलिए रो रहे इतने तुमसे, तो भक्तों को बुलाएंगे ना, इसको पकड़ो और पीछे जाके पीटो उसको, ये सारे हड्डियाँ ये आदमी ने तोड़ी है मेरी। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, नाउ यू हैव बिकम डिवोटी, यू हैव कम टू बिकम अ डिवोटी, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज टेक हरे कृष्ण महामंत्र, गिव अप सिंपल एक्टिविटीज एंड बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो और उसको रोना आया बहुत, कि भक्त कितने दयालु होते हैं, हाँ हमारे मन में कितनी पश्चात है, क्या बोलते हैं उसको, ये होता है ना वो ईर्षा, वो बदला लेने की भावना होती है ना, वो बदला लूँगा, ऐसा हमारे अंदर कितनी भावनाएं होती है, हम लोग छोड़ते नहीं लोगों को, मन में याद रखते हैं कि आखिर चांस मिलेगा तो उसको मैं दिखाऊंगा आगे जाके, ये खुद बोल रहा है कि मैं ही व्यक्ति था वो, कितना मौका था उसको, वो अकेला था, व्हीलचेयर में था, मारने के लिए बहुत चांस था उसको, अरेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मौका था उसको, लेकिन वो क्या देखा, चलो उसने पहला सोचा कि जो भी मुझे हुआ वो मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। और अभी आदमी भक्त बन रहा है तो अभी जिस उद्देश्य से मैं किताब बेचने जा रही थी वो उद्देश्य तो पूरा हो रहा है, तो अभी गुस्सा करने की क्या जरूरत है। यस, फुलफिल द पर्पज। मैं जो भी कष्ट मैंने सहन किया ट्रेन से गिर के, वो सब कुछ हुआ, उसका पर्पज था कि लोग भक्त बने, और ये बेचारा खुद आके भक्त बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैं गुस्सा क्यों करूँ उसके ऊपर। ऐसी अनंत कहानियाँ हैं इस्कॉन में, अनंत कहानियाँ हैं कि क्या क्या भक्त लोग करते हैं। भक्त लोग अरेस्ट हो जाते हैं किताब बेचने के लिए, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, जेल में डालती है, उनका मुकदमा होता है, फिर वापस आते हैं, वापस किताब बेचने चालू करते हैं। और एक किताब है, ज़रूर आप उसको पढ़ना, अभी मैं उसकी कहानी नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबी कहानी है उसकी, एक पूरी किताब है, उसका एक ड्रामा भी बना हुआ है, उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, इंग्लिश में अभी वो मराठी में भी आई है, हिंदी में भी आई है, उसका नाम मालूम, लेकिन सॉल्टेड ब्रेड नाम का रशियन भक्तों का एक कथा है उसके अंदर, कि रशियन भक्त लोग गवर्नमेंट की तरफ से बंदी होने पर कैसे छुप छुप के किताबें बेचते थे, और कैसे कैसे उनके जीवन में अत्याचार हुआ उनके ऊपर केजीबी की तरफ से, और कैसे कैसे उन्होंने भगवान को भक्त बनाया, और कैसे आज रशिया में 40 मंदिर बने हुए हैं, कितना प्रयास किया गया पहले उसके लिए, कितना त्याग और कितना भयंकर अत्याचार को सहन किया गया। ये किताब ज़रूर पढ़ना आप, तब आपको लगेगा कि वो तो हमारे देश के भी नहीं है, वो तो हमारे धर्म के भी नहीं है, उनका कोई कनेक्शन नहीं इंडिया से, किसी देश में जन्म हुआ है उनका, हाँ पाप करते लोग, नशा करते, जुआ खेलते, क्या क्या करते रहते हैं, व्यभिचार करते हैं औरतों के साथ में, हाँ होमोसेक्सुअलिटी करते हैं, नशा मतलब क्या 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 नशा करते हैं, उसका हिसाब नहीं है उनका। ऐसे लोग तुम्हारे हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, सोचो आप, रिस्किंग देयर लाइफ। हाँ भाई अपना अकेला चुपचाप भक्त बन के जप कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है वो तो अच्छी समझ सकते हैं, लेकिन दूसरों को भक्ति देने के लिए, प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, ना धर्म से हिंदू है, ना नाम से हिंदू है, ना धर्म देश से हिंदू है, किसी से भी कुछ भी नहीं है उनका, और वो लोग विश्वभर में आजकल प्रचार कर रहे हैं। दुनिया में कोई संस्था नहीं है ऐसे जो जान की बाजी लगाकर दूसरों को भक्ति देने के लिए प्रयास करते रहते। इसलिए मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस्कॉन में हूँ, कि मैं जानता हूँ, मैंने 30 साल में ये सब आंखों से देखा हुआ है, सब भक्तों की कहानियाँ मैंने पास से देखी हुई है। मेरे मन में बहुत गलत फहमियाँ थी पहले कि ये तो स्मगलर लोगों का बिजनेस है, जो में मंदिर खोल के रखा है, रात को स्मगलिंग होता है, दिन में भजन करते हैं। फिर मालूम था कि ये CIA का एजेंसी है, गुप्तचर संस्था होती है ना अमेरिका की, गुप्तचर क्या बोलते हैं उसको, हेरगिरी, वो दिन में भक्त के बन के रात को हेरगिरी करते रहते हैं सब जगह पे। और सुना था मैंने कि ये तो वेश्या व्यवसाय का एक पूरा अच्छा धंधा बना के रखा है, इतने कमरे बना के रखे हैं, रात को यहाँ पर पूरा वेश्या व्यवसाय करते हैं, ऐसे मेरे कॉलेज के दिन में गलत फहमियाँ थी। और दुर्भाग्य से हमारे कॉलेज के दिन में वो मूवी आई थी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, और वो ऐसे ऐसे गिरते रोड पे जू पे, उनका फिल्मिंग सब जगह रोड पे, समुद्र किनारे पे, लड़के लड़कियां बाल छोड़ के ऐसे नशा कर रही है, चरस गांजा पी रही है, और वो बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। उसकी वजह से बहुत लोगों के बीच में ये गलत फहमी हो गई कि हरे कृष्णा मतलब चरस गांजा पियो और नाचो पागल की तरह रोड पे आके। इस तरह का गलत फहमी लोगों में फैल गया, एक पिक्चर ने बहुत नुकसान किया लोगों का आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली जो लोग आ सकते थे भक्ति में इस माध्यम से, उनको लगा कि हरे कृष्णा मतलब ये स्मगलर लोग CIA और ये नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले। तो मैं जब मंदिर में गया ना, तो मैं एक जैसे कि पुलिस अफसर होता ना, वैसे उस तरह से गया था मैं, और हर जगह छान मारा मैंने, इनका कुछ अंडरग्राउंड गोडाउन होगा चरस का गांजे का, कुछ कुछ होगा, ये कमरे में क्या होता है, इधर मैंने सुना ऐसा होता है, सब जाके मैंने पूरा दिन बहुत दिन तक सर्वे करता रहा मैं, जैसे भक्त रूप के रूप में नाटक करते करते मैं सब दिखता था क्या क्या हो रहा है इधर। मुझे किधर भी एक भी ऐसा लगा नहीं कि ये लोग एजेंट है अमेरिका के, या ये लोग ड्रग बेचते हैं। बोला CIA का एजेंट 3 बजे क्यों उठेगा, CIA एजेंट होगा तो वो 10 बजे उठेगा, वो अपना बाद में काम करेगा ना, 3 बजे उठ के क्यों मंदिर में नाचेगा वो भगवान के सामने। इतना सुंदर भगवान का विग्रह, दो दो ढाई बजे उठ के उसको श्रृंगार करना, उसको मंगल भोग लगाना, उसको उठाना, फिर उनके मंगल आरती करना, छः छः आरती करना, कौन करेगा इतना नाटक? थोड़ा दिन करेगा, लेकिन सालों साल नाटक कौन कर सकता है? बस कमरे में जाके देखा, क्योंकि हमको भी कमरे में रहने को देते थे वो, बिकॉज वी आर मेडिकल स्टूडेंट, तो वो तो भक्त लोग रहते उधर, मेंबरशिप बना के रखा है। गोडाउन में गया, सब किताबी किताबी किताब है, कोई चरस गांजा का कोई है ही नहीं कुछ ठिकाना उधर। गोडाउन मतलब गोडाउन, नीचे नीचे थे गोडाउन थे उनके, सब किताबों से भरे हैं बीबीटी के, एकदम लाखों किताबें भरी हुई हैं ऊपर। और बता क्या रहे हैं लोग, ब्रह्मचारी कोई ये पीएचडी से आया हुआ है और इंडिया में ब्रह्मचारी बनाया, और भगवदगीता ऐसे बोल रहा है जैसे कि आप मराठी बोल रहे हो, जैसे मराठी हिंदी बोलते हैं हम लोग, ऐसे भगवदगीता धार 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 बोल रहे हैं। और हम लोग भारत के लोग, ब्राह्मण कुलवासी, ब्राह्मण कुलोत्पन्न दीपक बैठ के सुन रहे हैं उनसे। अरे अगर कोई नशा करने वाला हो, व्यभिचारी हो, जुआरी हो, स्मगलर हो, तो गीता को भाट करेगा वो, और कुछ नाटक करेगा, और कोई पिक्चर दिखाएगा लोगों को, कुछ मनोरंजन करेगा। तो मैं समझ गया कि कोई इसमें सब कुछ झूठ है, ये एक पिक्चर ने इसका नुकसान कर दिया पूरा। इतना शर्म भी आई, मैंने पहले भी बताया आपको, अरे क्या ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्या उपयोग क्या है उसका? बाद में समझ में आया कि तो हमारा काम है, ये हमारा काम है, भारतीय होने की वजह से ये लोग कर रहे हैं उसको। और क्या बोलते हैं, ये विदेशियों का, ये अंग्रेजों का मंदिर है, बोलते अंग्रेजों का मंदिर। अरे अंग्रेज लोगों को पहले भक्त बनाया, अगर आप लोग बनते तो आप लोग पहले बनाते। 30 साल तक प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ट्राई किया, एक शिष्य बना खाली, एक आचार्य प्रभाकर, एक शिष्य 30 साल, और 12 साल में उन्होंने 10,000 शिष्य बनाए, 108 मंदिर बनाए। हाँ, लेकिन 30 साल यहाँ जब प्रयास किया, एक व्यक्ति ने भी उसको स्वीकार किया, एक ही व्यक्ति ने, इतना लोगों को इतना मेहनत करने के बाद। तो उनके गुरु ने कहा था विदेश में जाओ, क्योंकि हमारे लोगों का कमजोरी क्या है, हमको सब कुछ मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, मेड इन फलाना, मेड इन दिकरा, ऐसा चाहिए हमको सब कुछ। है इंडिया का है क्या है, सब इंडिया का है। यही चीज़ अगर आपको यहाँ से लेके अमेरिका में जाके एक स्टैम्प लगाएंगे ना, मेड इन अमेरिका, तुरंत खरीदेंगे, इम्पोर्टेड है, 10 गुना दाम देंगे, लेकिन बहुत गर्व से पहनेंगे उसको। ये हमारी कमजोरी है, हम लोगों ने अपना ज़मीर, अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपने विचार सब बेच दिए उनको, उन्होंने एक तरह से हमको नंगा कर दिया पूरा, पूरे हमारे कपड़े का स्टाइल उतार दिया उन्होंने, बात करने का स्टाइल उतार दिया, चाय पीना चालू कर दिया, सब नशा चालू कर दिया, सब तरह का संस्कृति का हनन कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया उसको। और इतना हम लोग को क्या कहते हैं मराठी बोलते ना, इतना उड़ा बाटवला आप जरा तनी, इतना हमको उन्होंने करप्ट कर दिया कि हम लोग अभी हर एक व्यक्ति उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा बोलना चाहते हैं, उनके जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं। देखो आप सब लोग जीन पहनते हैं कि ना आजकल, टी शर्ट, टीन, बाल छोड़ के, हाफ स्लीवलेस, ये ऐसा फलाना, लो कट कपड़े, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये उनका कल्चर है, लेकिन सब लोग वैसा करना चाहते हैं आज। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम लाइक दैट, कोई बोल नहीं रहा है उनको कि देखो हाँ बेटी आपको अमेरिकन बनना है, आपको इस संस्कृति को अपनाना है, तो मम्मी नहीं बनूंगी मैं, नहीं आपको बनना है, ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहा है उनको। ऑन देयर ओन टेलीविजन घर पर रखा है गुरु, महागुरु, वो सबको सिखा रहा है कैसे कपड़े पहनना है, क्या बात करना है, डांस कैसे करना है, लड़का लड़कियों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे मिलना है, गले मिलना है, सबको टीवी सिखा रहा है आपको, और कोई गुरु की जरूरत नहीं है। घर बैठे वो गुरु आपको सब सिखा रहा है, आपकी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है आप लोगों को, जमीन से नष्ट कर रहा है वो। तो ये कार्य प्रभुपाद ने किया हुआ है, इसलिए हमें गर्व है इस बात का कि जाने अनजाने में हमें परिचय हुआ प्रभुपाद जी का, उनके किताबों का। और तभी मैं बम्बई में ही था जब वो बम्बई में रहा करते थे, मेरा जन्म होके 14 साल तक प्रभुपाद जी उधर ही थे, लेकिन हमारा भाग्य नहीं था, दुर्भाग्य से हम लोग फंसे हुए थे, कहीं दर्शन नहीं हुआ उनका। 20 साल की उम्र में हुआ, 6 साल के उनके जाने के बाद हम लोग मंदिर में आए और धीरे धीरे इस सबको स्वीकार किया। तो इसके बारे में गलत फहमी ज़्यादा है और सच्चाई बहुत कम लोगों को मालूम है। और अगर इसमें कोई खोट निकलती, कोई चीज़ जैसे निकलती कि वो सही नहीं है, गलत है, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों आते इसके अंदर? चलो 2-4 साल फंस गए, मेरे पिताजी बोलते थे अरे जवाने का जोश है, 2-3 साल करेगा आदमी वापस आएगा, छोड़ो मत। घर में बहुत आतंक हुआ ना, अभी अंग्रेजों के मंदिर में जा रहा है हमारा इतना डॉक्टर लड़का डॉक्टर पढ़ाई करेगा, डॉक्टरी करने वाला है, बहुत आगे पैसा कमाएगा, गाड़ी गाड़ी घूमेगा, बंगला बनाएगा, वो आदमी अंग्रेजों के मंदिर जा रहा है। अरे गुरु भी विदेशी है इसके, क्या भारत में कम गुरु है क्या हमारे? मेरे पिताजी ने आके झगड़ा किया हमारे गुरु से कि वाह यू आर, मतलब हिंदी में बात किया, हमको अनुवाद करके बताया गया उनको आप हमारे जवान बच्चों को क्यों बहका रहे हैं, हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं भारत में, तो आप विदेशी गुरु को क्यों उनको बहका रहे हैं, उनको सब जवानों को बहका रहे तुम लोग जब विदेशी गुरुओं के पीछे। ते अहम ममेति, शरीर भाव है ना, देहात्म भाव, उसकी वजह से। वही पिताजी जो मंदिर में आके झगड़ा करके चले गए, जब उनकी मृत्यु होने का समय आए तो हाथ जोड़कर बोला उन्होंने कि बेटा जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करते रहो करते रहो, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पहला कर्तव्य निभाऊंगा, बाद में एंड में बहुत ध्यान करूंगा जीवन में अब मैं एक मिनट भी ध्यान नहीं कर सकता, यहाँ पर टीबी है, छाती में इधर पैर में दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ा है, बढ़ाना तकलीफ है मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी इस उम्र में, फ्री हूँ पूरा, कोई काम धंधा नहीं, सब रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन मेरा यह अभी विश्वास हो गया है कि जवानी में जो आदमी करता है वही बुढ़ापे में कर सकता है, बुढ़ापे में नया कुछ ट्रेनिंग ले सकता हूँ जो कुछ जीवन में हासिल किया है वही आगे चलता है उसको लेके, इसलिए बचपन से हमने भजन किया है तो फिर वो बुढ़ापे में काम आएगा, वो सहजता से होगा। बुढ़ापे में नया कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है करने के लिए। तो ये हमारा रोग है, हम सोचते हैं कि भारतीय हैं, हमको भारतीय गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु कोई देश जाति का नहीं होता है, गुरु तो सेल्फ रियलाइज सोल है, आत्म साक्षात्कार जीव है वो, उसका जाति धर्म देखना भी नारकीय बुद्धि कहा गया है। गुरु का शरीर, गुरु की जाति, गुरु का कुल, गुरु का इतिहास, इसके बारे में चर्चा करना नारकीय बुद्धि कहा गया है, वो नरक में जाएगा अगर किसी मूर्ति को पत्थर समझेगा, लकड़ी समझेगा, पेंटिंग समझेगा, और कुछ समझेगा मूर्ति को, और गुरु को इस जाति का, उस जाति का, इस कुल का, उस कुल का, इसका इतिहास खराब है, ऐसे वो बात करेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप में नरक जाएगा, ये शास्त्र में लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत कष्ट उठाए, बहुत संकट का सामना किया है, बहुत आतंक का सामना किया है, उनको मारने के लिए भी कितना प्रयास किया, उनको जमीन से उखाड़ने के लिए जुहू में प्रयास किया, गुंडे आए मंदिर को उखाड़ने के लिए, तो बाल ठाकरे ने हमारे जुहू का मंदिर को बचाया। बाल ठाकरे को फोन किया, कह रहे हिंदू मंदिर बन रहा है और ये गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटी के लोग उसको उखाड़ने जा रहे हैं, एक फोन किया, खाली एक ही फोन करके क्या बोला, तुमको रहना ना मुंबई में रहना है ना, तुमको हिंदुओं का मंदिर नष्ट करते हो, बस खत्म, ऑर्डर कैंसिल, फिर मंदिर बन गया उधर। बाल ठाकरे कैसे भी होंगे लेकिन उन्होंने कितना महान सेवा किया है, हाँ इतना पावर था उनके अंदर, एक फोन किया म्यूनसिपालिटी में, ऐसा बात किया कि किसी की हिम्मत नहीं उनके आगे आने की, क्योंकि वो नहीं मानते तो वो 50 लोग लेके खड़े हो जाएंगे उधर, सबको भगा देंगे उधर ना, वो भेंडी बाजार में जाके बैठते थे वो, इसलिए भेंडी बाजार आके मुसलमान बाहर नहीं आया वहाँ से, इसलिए हम लोग अभी भी कंटी माला पहनकर घूम रहे हैं। हाँ शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज हम लोग यवन बन जाते, सब लोग हुसैन बन जाते सब लोग, शिवाजी महाराज ने इतना मेहनत किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी हरे कृष्ण कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो हमें हमारे धर्म का गर्व होना चाहिए, हमें अपना धर्म को बताने की शर्म नहीं होनी चाहिए, भारतीय होने का गर्व होना चाहिए कि हम भारत के हैं। आजकल भारतीय होने से बहुत शर्माते हैं, विदेश में जाकर देखो वाला इंडिया, वाला हिंदी, अला खराम, अला वाला ही ऐसे बात करते हैं, और हम भी छुप छुप के रहते हैं सऊदी अरब में और गल्फ में जाके, वो एशिया के लोगों को बहुत घटिया मानते हैं, और हम भी उनका डॉलर और उनका रियाल और उनका वो येन और उनका ये खाने के लिए वहाँ पर जाते हैं भिखारी बनकर। हाँ हमको उनका पैसा चाहिए, उनका संस्कृति चाहिए, उनके कपड़े चाहिए हमको, उनका टीवी चाहिए, उनका गैजेट चाहिए, उनका मोबाइल चाहिए हमको, सुख सुविधा हमको चाहिए, उससे हम चटे हुए हैं उनके लिए। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा संस्कृति को, तुम्हारा धन दौलत भोगने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, तुम जो हमारे देश से लेने के लिए भूल गए थे वो देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, हैंड डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। सब कुछ चुराया तुम लोग ने हमारे देश से, कोहिनूर हीरा चुराया, शिवाजी का तलवार लिया, टीपू सुल्तान का तलवार भी लेके गए आप, लेकिन जो चोरी करना चाहिए था वो नहीं चोरी किया तुमने, इसलिए मैं तुमको देने आया हूँ ये चीज़, मुझे तुम्हारे देश की कोई समृद्धि के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। और दिखाया अपने जीवन में, उन्होंने कोई कभी धोती निकाल के पैंट नहीं पहना, उन्होंने उनका कोई सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया, हवाई जहाज का किया जाने आने के लिए, भोग लेने के लिए नहीं किया। तो हम भारतीय लोग जो हैं वो हम भारतीय संस्कृति पर गर्व करना भूल गए हैं, और गर्व करना भूल गए ओवर, और उसके लिए शर्मिंदा होते हैं कि मैं भारतीय हूँ। ये हमारी पतन की स्थिति आज की है। तो जागो सब लोग, और हमारा धन जो है उसको अपनाओ और जीवन में उतारो उसको, नहीं तो क्या फायदा है। भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। महाप्रभु चैतन्य का आदेश है कि भारत में जन्म हुआ तो इतना पवित्र जन्म है आपका, इस भूमि में कितने संत लोग आए हैं, इतना जन्म हर हर राज्य में है, महाराष्ट्र में तुकाराम ज्ञानदेव है, ऊपर में कितने गुरु नानक है, इधर इधर कबीर है, उधर हर हर राज्य में हर भाषा में, उड़ीसा में सालबेग है, कितने संत लोग हैं। संतों की भूमि है ये, पवित्र भूमि, उनके चरणों का स्पर्श होकर ये भूमि पवित्र हो गई है। और संतों की बात छोड़ो, कितने भगवान के अवतार सब भारत भूमि में हुए, कहीं पढ़ा क्या आपने कोई भगवान का अवतार चाइना में हुआ, कुछ इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, कुछ टिम्बकटू में हुआ। सारे अवतार तुम्हारे देश में हुए हैं, कितने गर्व की बात है। भगवान ने तुम्हारे देश को चुना है अवतार लेने के लिए, और संतों ने भी यहीं पर आना चाहे। आज भी जब पश्चिम के लोग भोग लेकर जब थक जाते हैं, मतलब भोग ले लेकर उनको एक बार ऐसा अनुभूति होती है कि बस हो गया, अभी इसमें कुछ है ही नहीं, इतना साल से भोग ले रहा हूँ लेकिन समाधान तो प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर सोचते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए, फिर योगा करते हैं, फिर सोचते हैं कि इसमें भी कुछ दम नहीं लग रहा है, तो भारत में आते हैं और हिमालय में गुरु के पीछे ढूंढते रहते हैं कि भाई कुछ शांति तो चाहिए, मन में शांति नहीं मिल रही है। आज भी अगर कोई भौतिकतावाद से थक जाता है तो भारत की ओर ही देखता है, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी, कुछ योग सीखूंगा, कुछ करूंगा। आज भी, और हमारा जन्म उधर ही हुआ है, तो वहाँ के लोग भोग ले लेकर थक कर यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ के लोगों का एंटीना वहाँ लगा हुआ है, सारा एंटीना उधर है, उनको उसको वैसा बनना है। गांव के अंदर प्लेट के पटरी पे टट्टी कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल, खाने को अन्न नहीं है लेकिन हाथ में मोबाइल है, घर में टीवी के एंटीना लगा हुआ है, और हाफ पैंट बर्मुडा और स्लीवलेस और उनके सारे कपड़े पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं। मतलब क्या है इसका, खाने को अन्न नहीं है लेकिन हाथ में मोबाइल है, लैटरिन करने को लैटरिन बनी हुई नहीं है, प्लेट पटरी पे कर रहे हैं लेकिन बनना उनको अमेरिकन है। बोले क्या है, ब्रिज में क्या रखा है, इधर अब बम्बई ले चलो, अमेरिका ले चलो, हमको कोई वीज़ा दिलवा दो, इधर क्या है, भारत में क्या है। और भारत से लोग जो विदेशी काम करने जाते हैं वो क्या बोलते हैं, भारत में आकर क्या करेंगे, इतना पगार कौन देगा हमको, और क्या ट्रेन में कौन चढ़ेगा, इधर रिक्शा में कौन चढ़ेगा। तो वहीं के हो जाते हैं, वहीं के गुलाम हो जाते हैं उनके देश के। हाँ, विपले सेवे न कृपाणा दर्जन दुर्जन, दुर्जनों की सेवा करते करते भोग के लिए पैसे के लिए दुर्जनों की सेवा करते रहते हैं जीवन भर। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं, पापा ये गणपति क्या होता है। नो बेटा, इस एलिफेंट गॉड, ये इज एलिफेंट हेड। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तो कोई स्कूल में बोलेगा इज ऑल नॉन सेंस, तो बोला पापा डोंट चीट मी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं नवरात्रि क्या होती है, दशहरा क्या होता है, कितने उत्सव होते हैं, कुछ पता ही नहीं उसको, उधर जन्म हो गया है, उधर ही पड़ा है, उधर का ही बाबू बन गया वो। और एक बार भूल भूल के आया घूमने के लिए, लेट अस गो टू हिमालयाज, तो वो शौक हो जाता है ये क्या है सब। और लोगों ने बता के रखा है सब आडम्बर है, सब ढोंग है, कोई ऐसा होता है क्या हाथी वाला भगवान, और इतने सारे भगवान किसको चुनूं। ये नॉलेज किस कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है इस भूमि के अंदर। ये सब इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, अरे हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको तो कौन पढ़ेगा, हमारे संस्कृति का अभिमान अगर हमको ही नहीं है तो कौन गर्व करेगा उसके ऊपर। एक अमेरिका आदमी को देखो, वो कितना देश पर गर्व करता है। सऊदी आदमी को बोलो, मैं सऊदी आदमी को, मैं 2 साल वहाँ रह चुका हूँ, हनाफी सऊदी, सऊदी के ऊपर इतना गर्व है उसका, मैं सऊदी हूँ, मतलब कोई आसमान से टपका हुआ है। रोड पर जाएगा तो रोड गाड़ी रुक जाती है, सऊदी क्रॉस करेगा फिर गाड़ी जाएगी। और हिंदी आदमी आएगा जब एशिया का बांग्लादेशी वगैरह, तो चले जाएंगे और हम लोग भागेंगे उसको देख के। सऊदी आदमी का कितना गर्व है, सऊदी कंगाल हो गया तो उसके घर में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे का पैकेट भेजते हैं, गरीब हो गया तो। कितना गर्व है उनको अपने संस्कृति का, अपने देश का, अपने इतिहास का, और हमारा देश इतना महान होने पर हमारा सारा एंटीना उधर लगा हुआ है। सब कपड़े देखो, मैं कपड़े खरीदने गया था उधर चॉपर स्टॉप में, एक भी कपड़ा मुझे इंडियन ब्रांड का नहीं मिला उधर। मैं पूछ रहा था कि कोई इंडियन ब्रांड है, सब विदेशी ब्रांड, एवरी सिंगल कपड़ा, छोटे से लेके मोटा तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ विदेशी। मुझे कोई लेता ही नहीं इंडियन माल, सबको विदेशी चाहिए। सारा हमारा पैसा विदेश में जा रहा है, हम लोग गर्व कर रहे हैं उनका कपड़ा पहन के, उनके स्टाइल पहन के, उनके स्टाइल में बात करके। और ब्रिज में जाओ, उधर लिखा है ऑस्ट्रेलियन सीखे, अमेरिकन सीखे एक्सेंट के साथ, इंग्लिश सीखे ब्रिटेन एक्सेंट के साथ। क्यों? वहाँ जाना है हमको नौकरी करने के लिए, वैसा जाके बनना है। वहाँ जाके फिर इंडिया का हेट करते रहेंगे, क्या इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपने संस्कृति, अपने इतिहास और अपने स्वत्व के बारे में कभी अभिमान करना छोड़ना नहीं चाहिए। वो भूल गए इतने साल तक, अभी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हमारा धन है भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु हमारे हैं, राम भगवान हमारे हैं, नरसिंह भगवान, वामन भगवान सब हमारे हैं, ये आके हैं सब, सब इतिहास हमारा ही है। हमारे बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। हमने कभी भी ये ट्रेनिंग नहीं लिया बचपन में, हमको सोते ही बच्चे बड़े होते होते सब अपना महाभारत सब सॉरी सब पता हो गई। कई लीला देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं, कई नाटिका देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ किताब में पढ़ रहे हैं। ये भारत का महत्व महानता है। ये उड़िया में आपका जन्म होगा तो आपको जन्म से ही, स्कूल से ही सालबेग की कविताएं आपको सिखाएंगे। महाराष्ट्र में जन्म होगा तो मराठी में तुकाराम के अभंग कविता के रूप में आएंगे, उसका इतिहास आएगा, आपको पता चलेगा सब कुछ अपने आप ही। एनीवेज, तो मेरे मन में तो बहुत सारी बातें बताने के लिए आपको, तो कहने का तात्पर्य इतना है, अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उस पर शर्म मत करो, बी प्राउड, गर्व करो अपने बात पर कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्या है, मेरा देश का इतिहास क्या है, मैं किस जाति से हूँ। कोई निंदा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और गर्व से हमारी संस्कृति लोगों को सिखाओ। वो लोग आते हैं यहाँ पर मेहंदी लगाते हैं, फॉरेनर लोग है ना, बिंदी लगाते हैं। अरे हमारे इस्कॉन मंदिर में जाओ आप, देखो आप कितनी विदेशी औरतें हैं जो पूरा पल्लू लेकर, साड़ी लेकर, तिलक लगाकर, बिंदी पहनकर जीवन भर ऐसे रहती है और सर से पल्लू नहीं हटता है उनके। वृंदावन में जाओ, मायापुर में जाओ, और हम लोग, वो लोग आपकी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप उनकी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने इंडियन लोग टाइट पैंट और टाइट टी शर्ट और लड़कियां सब दिखाते हुए आती मंदिर में, और वो विदेशी औरतें बच्चों को भी सर मुंडवा के, तिलक लगा के, छोटी रख के मंगल आरती में लेके आती हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। एनीवेज, तो अपने संस्कृति का गर्व करो, और हमारी संस्कृति का सबसे बड़ी भेंट हमारे लिए क्या है, वो है भगवान की भक्ति। ये हमारे देश की सबसे बड़ी भक्ति है, भेंट है हमारे लिए भगवान की भक्ति। और अगर भारत में जन्म लेने के पश्चात आपने भजन भगवान का नहीं किया तो हमारा जन्म तो बेकार गया पूरा। जन्म तो बातों में बीत गयो, कबहू न कृष्ण कहो। सब यहाँ वहाँ की फेफजूल की बातें करने में जीवन समाप्त हो जाता है हमारा। तो महाप्रभु कहते हैं कि भारत में जिसका जन्म हुआ है उसका कर्तव्य क्या है, खुद का पहले उद्धार करें इस भक्ति मार्ग को अपना के, और कौरव परोपकार, भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, मनुष्य जन्म होइलो जार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। खुद का जन्म सार्थक करो, खुद भगवान के भक्ति में आओ और लोगों को बनाओ। आपुलिया सार के कड़ावे सकल जन, एक बार खुद बनो अपने आप भगवान का भक्त और दूसरों को बनाओ, अपने संग में जो आएंगे उनको दे दो भेंट, ये तो हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप क्या करो, एक दो मिनट खड़े हो जाओ सब लोग।